नमस्कार भारत, रविवार 19 जुलाई, मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी।
इन्फॉर्मेशन 9:40 पर मिली कि यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर चुका है जिसमें कुछ आदमी दब गए हैं, तो हमारी 2 टीमें यहाँ पर पहुंची।
सऊदी अरब में इस्लामिक स्टेट के 400 से ज्यादा संदिग्ध लड़ाके गिरफ्तार।
सबसे ज्यादा इसमें जो लोग हैं वो सऊदी हैं, उसमें जॉर्डेनियंस भी है, सीरियंस भी है और दूसरे अरब ममालिक के लोग भी हैं, अफ्रीकन भी हैं।
करेंगे खास बातचीत दिल्ली के आरुषि हत्याकांड पर सवाल उठाने वाले अविरूप सेन से। अखबारों की समीक्षा के साथ होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। भारत की राजधानी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इमारत के आसपास के रास्ते बेहद सकरे होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के नेता खालिद मचाल से बातचीत की। 4 सालों में यह पहला मौका है जब सऊदी शाही घराने ने हमास से बातचीत की बात स्वीकारी। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी SPA के मुताबिक मच्चाल ने फलस्तीनी संघर्ष में सऊदी राजघराने के सकारात्मक रुख की सराहना की। हाल के सालों में हमास और सऊदी अरब के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, इसलिए ये बातचीत काफ़ी अहम होने की बात की जा रही है। अमेरिका के चैटेनूगा में 5 सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने से पहले हमलावर ने अपने एक दोस्त को SMS भेजा था जिसमें अमेरिका के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कही गई थी। मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का भी जिक्र किया था। पुलिस के मुताबिक वो अब भी हमलावर के इरादों की जांच करने में जुटी हुई है। गुरुवार को हुई इस घटना में 5 अमरीकी सैनिकों की हत्या करने के बाद पुलिस के साथ संघर्ष में हमलावर की मौत हो गई थी। मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज के इस दोस्त ने अपना नाम गुप्त रखने की अपील की और कहा कि जब उन्हें मोहम्मद का संदेश मिला तब उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के मुताबिक लेबनान में उनके 5 नागरिक लापता हो गए हैं। उनके साथ उनके लेबनानी ड्राइवर का भी अतापता नहीं है। पुलिस के मुताबिक उनकी कार बेरूत के पूर्व में स्थित एक कस्बे में पाई गई। चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मिखाइला लेग्रेवोना ने कहा,
तक můžeme v tuto chvíli potvrdit, že skutečně pohřešujeme 5 českých občanů.
लेबनन में हमारे नागरिकों को खोजने के लिए सुरक्षा अधिकारी लगे हुए हैं। हम उनके और लेबनन सरकार के संपर्क में हैं। सुरक्षा वजहों से अभी हम अपने लापता नागरिकों के नाम जारी करने की स्थिति में नहीं हैं। ये थी चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता। फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जेफरी वेब ने अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत ने $1 करोड़ की जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि वो अदालत के 32 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकते और उनकी गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नज़र रखी जाएगी। वेब को पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड से प्रत्यर्पित कर अमरीका लाया गया है। अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर रविवार को इसराइल पहुंचेंगे। इसराइल के साथ परमाणु समझौते से चिंतित मध्य पूर्व एशिया के कई देशों को समझाने की अमरीकी कोशिशों के तहत यह यात्रा हो रही है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत, BBC रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। जैसा कि आपने खबरों में सुना, पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 लोगों को घायल अवस्था में मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव का काम NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा बचाव बल कर रही है। बचाव अभियान पूरे रात चलता रहा। अब से कुछ ही देर पहले मैंने बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे रोशन सिंह असवाल से इस बारे में बात की।
हादसा आज आफ्टरनून में हुआ है, करीब 5-6 बजे करीब। एनडीआरएफ टीम को ये इन्फॉर्मेशन 9:40 पर मिली कि यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर चुका है जिसमें कुछ आदमी दब गए हैं। तो हमारी दो टीमें यहाँ पर पहुंची, एक द्वारिका से एक टीम हमने मार्च करवाई, एक हमारी गाजियाबाद वाली टीम, एक टीम 11:30 बजे पहुंच गई थी, दूसरी 12:15 बजे पहुंच गई। और तब से हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग पहले निकाले जा चुके थे यहाँ के लोकल्स के अनुसार में, और कुछ लोग दबे हुए थे। हमने काफी खोजबीन किया लेकिन हमें ज्यादा नहीं मिला, केवल एक डेड बॉडी हमें जो मिली है उसको हमने निकाल दिया, और अभी दो डेड बॉडी और वहाँ पर दबे होने की आशंका है। तो अभी उसका ऑपरेशन चला हुआ है, उसी को हम निकाल रहे हैं।
अभी तक कुल कितने शव निकाले गए हैं?
कुल अभी तक 8 जीवित और 3 मृत निकाले जा चुके हैं, 2 और के दबे होने की आशंका है अभी, इसीलिए ऑपरेशन जारी है।
और ये कब तक उम्मीद है कि ऑपरेशन आपका पूरा हो जाएगा?
बस मेरे ख्याल से अभी 2-3 घंटे करीब और लगेंगे।
क्या कुछ पता चल सका है कि इमारत गिरी क्यों?
नहीं, इसका तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमें भी नहीं मालूम पड़ा कि कैसे था। कुछ सीवर लाइन जारी थी नीचे से, तो कुछ मकान के नीचे सीवर लाइन थे, पानी इकट्ठा हो रहा था, तो उसने धीरे धीरे खोखला करना खाली किया था नींव को, तो इस कारण से शायद बिल्डिंग गिर गई है।
जब ये हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग में कितने लोग थे?
यहाँ के जो लोकल है, जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोग जो बाहर थे, वो बताते हैं कि उस समय लगभग 12 आदमी थे उस बिल्डिंग में, और 12 में से 10 को निकाला, 3 मृत और 7 जीवित को निकाला जा चुका है, और बाकी 2 और दबे होने की आशंका है।
और अभी ये पता नहीं चल सका है कि ये इमारत कितनी पुरानी
थी? नहीं 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 नहीं।
दिल्ली में गिरी है एक 4-मंजिला इमारत, और उसके बारे में जानकारी दे रहे थे रोशन सिंह असवाल, जो एनडीआरएफ की बचाव टीम के का नेतृत्व कर रहे हैं। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें ले लेते हैं। सऊदी अरब में अधिकारियों ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के 431 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सऊदी अरब का कहना है कि इस्लामिक स्टेट देश में अव्यवस्था फैलाना चाहता है और चरमपंथियों के कई षड्यंत्रों को नाकाम कर दिया गया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाले इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ये बात सामने आई है कि इनकी साजिश में राजनयिक मिशनों को निशाना बनाना, सुरक्षा बल के सदस्यों की हत्या और हर शुक्रवार को मस्जिदों पर बम हमले करने की योजनाएं शामिल थीं। मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर संदिग्ध सऊदी नागरिक हैं, लेकिन इनमें कुल मिलाकर यमन और सीरिया समेत 6 देशों के लोग शामिल हैं। सऊदी अरब अमेरिका के नेतृत्व वाले उस गठबंधन का हिस्सा है जो सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इस्लामिक स्टेट का कहना है कि मई में सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में शिया मस्जिदों पर हुए बम हमलों में उसका हाथ था। इन हमलों में 25 लोग मारे गए थे। सऊदी अधिकारियों ने यह भी बताया कि इसी साल अप्रैल में भी उन्होंने इस्लामिक स्टेट के 93 संदिग्ध चरमपंथियों को गिरफ्तार किया था और रियाद में अमरीकी दूतावास समेत कई हमलों के षड्यंत्र को नाकाम किया था।
ब्यौरा भेजा था बीबीसी संवाददाताओं ने और आपको सुना रहे थे प्रभात पांडे। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक इन षड्यंत्रों में राजनयिक मिशनों को निशाना बनाना, सुरक्षा बल के सदस्यों की हत्या और मस्जिदों पर बम हमले करने की योजनाएं भी शामिल थीं। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने सऊदी अरब के जेद्दा शहर में अखबार अरब न्यूज़ के संपादक सिराज वहाब से पूछा कि पक्के तौर पर ये कैसे कहा जाए कि पकड़े गए संदिग्ध इस्लामिक स्टेट के सदस्य हैं।
देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इस्लामिक स्टेट से इनका ताल्लुक था। इसलिए कि इंटीरियर मिनिस्ट्री यहाँ की जो है, जो होम मिनिस्ट्री भी कहलाती है, उसने वादे किया है कि ये लोग डायरेक्शन जो ले रहे थे वो उन एलिमेंट से ले रहे थे जहाँ पर IS का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, दाइश का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे मसलन इराक में और सीरिया में जो दाइश है, इस्लामिक स्टेट जो नाम से है, उनसे वो डायरेक्शन ले रहे थे और ये तमाम सारे लोग उनसे टच में थे। और इन तमाम सारे लोगों का मकसद ये था कि यहाँ पर जो मसाजिद हैं, स्पेशली जो शिया समुदाय हैं, उनकी मसाजिद पर अटैक किया जाए, वहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग की जाए ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले।
इसमें नेशनैलिटीज कौन कौन सी हैं? क्या ज्यादातर सऊदी हैं या बाहर के भी हैं?
जो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आया है उसमें कहा है कि सबसे ज्यादा इसमें जो लोग हैं वो सऊदीज हैं, उसमें जॉर्डेनियंस भी है, सीरियंस भी है और दूसरे अरब ममालिक के लोग भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, कीनियंस भी उसमें हैं। लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जो तादाद है और जो तस्वीरें उन्होंने रिलीज की हैं वो तमाम के तमाम सारी जो हैं वो सऊदी यंगस्टर्स हैं, उनके नाम हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक है और वो ज्यादातर सऊदी है।
तो ये चिंता की कितनी बात है सिराज वहाब की, इतनी बड़ी संख्या में उनमें से ज्यादातर सऊदी हैं, वो इस्लामिक स्टेट की तरफ उनका झुकाव हो रहा है, एक तरफ यमन में लड़ाई चल रही है, इस्लामिक स्टेट का बढ़ता खतरा सऊदी अरब में, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, इसमें दो पहलू है, दो एलिमेंट है इस चीज के। एक तो ये कि ये तमाम सारे जो लोग पकड़े गए हैं वो बहुत यंग एज ग्रुप में है। इसका मतलब ये कि ये दाइश ने और इस्लामिक स्टेट ने जिस तरह का ये जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल किया है लोगों को रिक्रूट करने में और यंग लोगों को ब्रेन वॉश करने में, उनको अपनी तरफ, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करने में, तो ये पहलू जो है बहुत ही संगीन और बहुत ही खतरनाक उसका पहलू है। जिस तरह की वीडियोज दाइश की तरफ से सीरिया में या इराक से जो निकली है वो बड़ी, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, वो इमीडिएटली जो है यंगस्टर्स को अपील करती है। तो ये एक तो बहुत ही किसी भी मुल्क के लिए, सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि किसी भी मुल्क के लिए एक ये बहुत ही तश्वीशनाक या बहुत ही कंसर्न जो है एलिमेंट है और उसका वो मुकाबला कर रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन और उनके अलकायदा का बड़ा जोर और बोलबाला था तो सऊदी अरब में भी एक ऐसी वेव ऑफ अटैक्स हुई, सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई और यहाँ जिद्दा में जो अमेरिकन काउंसिल था उस पर भी अटैक हुआ। लेकिन उसके बावजूद सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2005 में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ और जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं वो इस्तेमाल करके ये तमाम सारी सेल्स को न्यूट्रलाइज किया था। और फिर 2005 के बाद आप पूरे 10 साल का एक ऐसा पीरियड गया है कि जहाँ पे इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके जो है जो फॉरनर्स थे जिन्होंने स्टडी की है सऊदी पैटर्न को कि इन्होंने किस तरह टेररिज्म का मुकाबला किया है, तो बारहा कहते हैं वो लोग कि ये जो है ये बैटल जो है वो हार्ट एंड माइंड की बैटल है। एक तो ये एस्पेक्ट है कि मिलिट्री एस्पेक्ट या सिक्योरिटी एस्पेक्ट, इनको किस तरह सिक्योरिटी के तौर पर न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन दूसरा बहुत अहम पहलू इसमें ये है कि ये यंगस्टर्स को किस तरह वो जो ब्रेन वॉश किए जा चुके हैं उनको वापस सही राह पर लाया जाए, सही रास्ते पर लाया जाए। तो उसमें उन्होंने जो रिलीजियस स्कॉलर थे, उलमा थे, उनको इस्तेमाल किया और उनको ये बताया और उनको ये फिर से पढ़ाया कि वो जो रिलीजन का गलत मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या उनको जिस तरह बताया गया है वो गलत है, और उनको फिर सोसाइटी में रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की गई है।
जिद्दा के अखबार अरब न्यूज के संपादक सिराज वहाब से बातचीत कर रहे थे विनीत खरे।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत न होता।
मैं तो हूं
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, आज निखिल रंजन के साथ। 2008 आरुषि हत्याकांड में अदालत बच्ची के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार को दोषी करार दे चुकी है, लेकिन कई लोगों के लिए हत्या का रहस्य आज भी बरकरार है। 16 मई 2008 को दिल्ली से सटे नोएडा के घर में 14 साल की आरुषि का शव मिला था। अगले दिन घर में काम करने वाले हेमराज का शव घर की छत पर मिला। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने केस सुलझाने का दावा किया और कहा कि घर की राजेश तलवार ने कथित तौर पर आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। लेकिन फिर मामला सीबीआई के पास चला गया। 26 नवंबर 2013 को अदालत ने तलवार दंपत्ति को दोषी करार दिया। तलवार दंपति सभी आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि किसी बाहरी शख्स ने घर में आकर ये हत्याएं की, पत्रकार अविरूक सेन ने आरुषि नाम की किताब लिखी है। उन्होंने किताब में सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और तलवार दंपति का बचाव किया है। विनीत खरे ने अविरूक सेन से पूछा कि सीबीआई और तलवार दंपति का क्या कहना है कि आखिर ये हत्याएं कैसे हुई।
सीबीआई ये कहता है कि हेमराज और आरुषि के बीच में कोई संबंध था और उस रात डॉक्टर तलवार ने उनको आरुषि के कमरे में देख लिया था। इसके बाद डॉक्टर तलवार ने गोल्फ क्लब ला के दोनों को मारा वहाँ पे, फिर गला काट दिया। फिर डॉक्टर और नुपुर तलवार हेमराज के बॉडी को अपने छत पे डाला और नीचे आके सारा क्राइम सीन ड्रेस अप किया या क्लीन किया। तलवार दंपति का ये कहना है कि वो सो रहे थे जब ये होगा और उनको कुछ पता नहीं, उनको पता चला सुबह 6 बजे तक। सीबीआई के वर्जन का एक फंडामेंटल अजम्पशन है, वो ये कि ये एक क्लोज्ड डोर मिस्ट्री है, रूम के अंदर जो है उन्हीं में से किलर है। अजम्पशन ये भी है देयरफॉर कि कोई और नहीं आया था उस रात उस फ्लैट में। मेरे किताब में जो एविडेंस मैंने निकाला फ्रॉम सीबीआईज ओन रिकॉर्ड्स, देयर इज इनफ एविडेंस टू एटलीस्ट सजेस्ट The presence of outsiders.
लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पाते कि किसी के रूम के बगल वाले रूम में जहां उनकी बेटी सो रही है वहां इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं।
बिल्कुल मैं इतना कह सकता हूं कि सीबीआई ने खुद एक साउंड टेस्ट किया था उसी फ्लैट में, एक रिक्रिएशन किया था। रिपोर्ट में ये निकल के आया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आप अगर एसी चला के सो रहे हो, आपका एसी का नॉइज लेवल पे डिपेंड करेगा ये, पर ये बात हो सकता है। पॉसिबिलिटीज को कम से कम एंटरटेन कीजिए, एविडेंस को उसके बाद देखिए, फिर आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो।
जो चाबी थी आरुषि के दरवाजा वो लॉक करके सोते थे, चाबी अपने पास रखते थे, वो चाबी कहाँ गई, वो कैसे दरवाजा खुला और एंट्री कैसे हुई, ये शायद अपनी तरफ से समझा नहीं पाए और इसका एक कारण था कि उन्हें सजा हुई। इसको क्या आप मिस्ट्री को अनलॉक कर पाए हैं आप?
मैं कई बार ये सवाल उनसे पूछा पर उनका यही कहना है कि उनको याद नहीं है। उनका ये भी कहना है कि देखिए हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसा हादसा होने वाला है। पर मैटर ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि उनका वर्जन में कॉन्ट्रडिक्शन है और ये किताब में रिफ्लेक्टेड है।
लेकिन जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से वर्जन चेंज हुआ है तो आपने उस पर सख्त आपत्ति जताई है।
बिल्कुल, इसका कारण ये है कि ये एक पॉइंट पे इनकंसिस्टेंट है और कम से कम 100 पॉइंट पे प्रोसिक्यूशन इनकंसिस्टेंट है। एक पोस्टमार्टम डॉक्टर अपना बयान 6 बार बदलता है, आपको क्या ये सही लगता है?
आपने इस केस को क्यों चुना? क्या आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहे हैं? इस तरह के बच्चियों की मौत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन आरुषि जैसी घटनाएं हिंदुस्तान जैसे देश में, बड़ा देश है, बहुत रेगुलरली होती है। आप रोज इस तरह के किस्से सुनते होंगे जिसमें किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। क्या आपने भी उसी को मिल्क नहीं किया है? आपने कहा है कि सेक्स बिकता है, इसीलिए चाहे मीडिया ने उसको उठाया इतने जोर शोर से, मिडिल क्लास को लगा कि इसमें काफ़ी मसाला है तभी उतना इंटरेस्ट जागा, आपने इस पर किताब लिखी। सवाल ये होगा कि आपने आरुषि पर किताब क्यों लिखी?
मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, जो असाइनमेंट मेरे को दिया गया ये मेरा रोजी रोटी है, तो मैं उसको स्वीकार किया। माई स्टोरी वॉज नॉट आरुषि एनीमोर। माई स्टोरी, इफ यू रीड माई बुक, इज इंडिया इंट्रोस्पेक्टिंग। माई स्टोरी इज अबाउट वाई वी आर द वे वी आर,
क्यों है भारत इस तरह से।
या
कई सारे ये सवाल का जवाब अभी भी शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आरुषि ही क्यों?
ये मर्डर का जो लोकेशन था, हमारा जजमेंट्स जो है न्यूज के बारे में जो इज ऑफन डिसाइडेड ऑन लोकेशन ऑफ द इवेंट, जैसे
दिल्ली की घटना है कि दिल्ली के बाहर।
एब्सोल्युटली, अगर फॉर इंस्टेंस नॉर्थ ईस्ट जाओगे
कहेंगे कि वहां की घटनाएं क्यों नहीं कवर होती।
मैं काफी सारे साल नॉर्थ ईस्ट का कवरेज किया है और वहां पे यही कंप्लेंट है।
किताब ऐसा लगता है कि जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, जिन्हें सजा भी हुई है, राजेश और नुपुर आरुषि के माता पिता, ये उनके पक्ष से लिखी गई किताब है। जब आप एक पत्रकार हैं, क्या आपको दोनों पक्ष नहीं देखने चाहिए? आपकी पूरी कोशिश उस किताब में है ये प्रूव करने की कि जो प्रोसिक्यूशन का केस था, सीबीआई पुलिस सब गलत है, सिर्फ जो एक्यूज्ड हैं वो सही है।
इस किताब में हर एक तथ्य जो है एट्रिब्यूटेबल है, ये या तो पब्लिक डोमेन से है या डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, या इंटरव्यूज है वेयर द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड इज क्वोटेड। मेरा विनती यही है कि आप इस किताब का सोर्सिंग देखिए और इस किताब में जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो देखिए। इसमें अनएट्रिब्यूटेड एक भी लाइन, और ये इट्स अ चैलेंज टू यू।
नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपने अज्यूम की हैं, जैसे कि आप एक कैरेक्टर है आई थिंक प्रोसिक्यूशन से, कि वो जाट समाज में आते हैं, वहां पर ऑनर किलिंग की बात होती है, उस लिहाज से उनका जो रवैया था राजेश और आरुषि को लेकर इस तरह से था कि ऑनर किलिंग में शायद कहीं उनका हाथ हो,
ये इक्वली
इस तरह के एलिमेंट आपने डाले हैं,
क्या
लेकिन
वो...
क्या उसको इस केस से जोड़ना ये एक सही सोच थी?
मैंने ये भी लिखा कि नूपुर तलवार महाराष्ट्र ने, तो डिस्क्रिप्शंस जो है सबके बारे में, द बिलीवेबिलिटी इज हायर फॉर अ पर्सन हु हैज दैट कॉन्टेक्स्ट। मेरे हिसाब से अच्छे जर्नलिज्म का ये भी एक फैसेट है कि आप जिनके बारे में लिख रहे हो उनको कॉन्टेक्स्ट में डालो। MS दहिया साहब जो फोरेंसिक साइंटिस्ट के बारे में आप कह रहे थे, वो जाट हैं या पंजाबी हैं या बंगाली हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इट इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए डाला गया।
लेकिन आपके आलोचक ये कहेंगे कि आलोचक कोशिश है कि किसी न किसी तरह प्रोसिक्यूशन के जो टीम मेंबर्स हैं उनको,
देखिए आलोचना तो मैं वेलकम करता हूँ। दहिया साहब का जो कंक्लूजन है एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, आप ये देखिए,
और MS दहिया, मैं बता दूं, वो डेप्यूटी डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर,
करेक्ट। दहिया साहब इज पॉसिबली विश्व में एक ही शायद शख्स होंगे जो फोटोग्राफ देख के ये बता पाते हैं कि इसमें दो ब्लड टाइप्स हैं। दहिया साहब ये भी कहते हैं एक ही क्राइम सीन से सिर्फ एक टाइप का ब्लड आप रिमूव कर सकते। दहिया साहब, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, गोधरा में जब वो गए थे और वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे, उनने ये कहा था कि एक मॉब तोड़ फोड़ करके बोगी के अंदर आए, केरोसिन डाला और मार पीट हुआ, जला के निकल गए। दहिया साहब सीन पे गए थे 2 महीने बाद। विटनेसेस जो उस बोगी में थे, जो बचे थे समहाउ, एक भी विटनेस को ये बात एक भी विटनेस ने नहीं कहा कि ऐसा कुछ हुआ भी था कंपार्टमेंट में। तो दहिया साहब हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड।
आरुषि पर लिखी किताब के लेखक कवि रूप सेन से विनीत खरे की ये बातचीत का दूसरा हिस्सा जो है आप आज शाम को घटनाचक्र में सुन सकते हैं। और अब हम कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं आज की अखबारों की। सुबह के अखबारों में क्या कुछ हुआ है, इस पर प्रभात पांडे नज़र डाल चुके हैं। प्रभात, बताइए क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी निखिल, कल ईद के मौके पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कथित तौर पर तनाव देखा गया, उसकी खबरें अखबारों में छाई हुई हैं। द हिंदू लिखता है, इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज फायर नॉट स्वीट्स ऑन ईद, जिसमें BSF ने कथित तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स को उन्होंने मिठाई दी लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने लेने से मना कर दिया।
ये तो बहुत पुरानी रवायत रही है कि ईद के मौके पर दोनों तरफ से मिठाइयाँ दी जाती हैं।
जी, लेकिन ये इस तरह का पहला मौका देखने में आया जबकि खबरें इस तरह की आई कि पाकिस्तान ने मिठाई लेने से इनकार कर दिया है। जनसत्ता ने हेडलाइन दी है इस खबर को, नहीं ली मिठाई गोलियां बरसाई, इस तरह से दिया हुआ। इसके अलावा अखबारों में जो दिल्ली में शुक्रवार को जो आनंद पर्वत इलाके में एक युवती की हत्या की गई थी, उसकी खबरें भी छाई हुई हैं और उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो समय रहते कार्यवाही सतर्कता दिखाई होती।
कुछ, तो कुछ ये भी उन्होंने कहा है कि उनके अधिकार दिल्ली पुलिस के उनको सौंप दिए।
जी, उन्होंने इस केस का हवाला देते हुए एक बार फिर से जो है वो दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत लाने की बात कही। ये वाली खबरें भी जनसत्ता में और द स्टेटमेंट में छाई हुई हैं। केजरीवाल स्लैम्स कॉप्स फॉर गर्ल्स मर्डर, ये छाई हुई है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे छापा है जिसमें रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे छापा है जिसमें लिखा हुआ हेडलाइन दी है 16 लाइफ्स लॉस्ट एवरी आर, इंडियाज रोड्स प्रूव डेडलीस्ट इन 2014, और जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की सड़कें जो हैं
हर घंटे 16 लोगों की मौत हो रही है
भारत में, और जिसमें कहा गया है कि जिसमें कहा गया है कि दिल्ली की सड़कें जो हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। इसके अलावा एक कई साल पहले जो निठारी कांड हुआ था उसी की तर्ज पे एक और बहुत ही भयावह कांड सामने आया है जिसमें दिल्ली के बेगमपुर इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और उस पर आरोप है कि 15 बच्चों की जो है वो यौन शोषण के बाद हत्या की गई है। हेडलाइन दी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, निठारी 2? मैन कन्फेसेस टू अब्यूजिंग किलिंग 16 किड्स।
ये गिरफ्तार हो चुका है,
ये गिरफ्तार हो चुका है बेगमपुर इलाके से। इसके अलावा सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उनकी भी चर्चा है। आपने देखी ये फिल्म?
नहीं, मैं तो नहीं देख पाया। क्या कितना करोड़ कमा लिया
इसमें? ये दिया हुआ है कि पहले दिन के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे वो जो तकरीबन 27 करोड़ रुपए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन काफी अच्छे कलेक्शन है।
जी, बहुत शुक्रिया प्रभात अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल की खबरें सुन लेते हैं आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। एशिया ओशियाना डेविस कप ग्रुप एक के मुकाबले में कल मेजबान न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने भारत को युगल मुकाबले में मात दी। भारत के रोहन बोपन्ना और साकेत मायनेनी की जोड़ी को न्यूजीलैंड के आर्टेम सिटेक और मार्क्स डेनियल के खिलाफ सीधे सेटों में 3-6, 6-7, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब विश्व गुरु प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भारत को आज दोनों उलट एकल मुकाबले जीतने ही होंगे, जबकि न्यूजीलैंड को केवल एक जीत की जरूरत है। उधर जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा और आखिरी 2020 मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। इससे पहले भारत ने पहला 2020 मैच बेहद आसानी से 54 रनों से अपने नाम किया था। वहीं चीनी ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल चीन के लॉन्गचेन और 5वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चाउ तियेन चेन के बीच खेला जाएगा, जबकि महिला एकल वर्ग के फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल चीन की ज्यूरुई ली और 6ठी वरीयता हासिल चीन की ही यिहान वांग आमने सामने होंगी। वहीं लॉर्ड्स में एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 108 रन बना लिए थे। कल स्टंप के समय सलामी बल्लेबाज क्रिस रॉजर्स 44 और डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले कल इंग्लैंड की दूसरी पारी 312 रन के स्कोर पर समाप्त हुई। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टेयर कुक ने 233 गेंदों का सामना करते हुए 13 चौकों की मदद से सर्वाधिक 96 रन बनाए। उनके अलावा बेन स्टोक्स ने 87 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 5वें विकेट के लिए 145 रनों की साझेदारी हुई। मोइन अली ने भी 39 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बावजूद पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 254 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता तो इंग्लैंड को फॉलो ऑन दे सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने गेंदबाजों को आराम देना उचित समझा। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 63 रन देकर 3, मिचेल जॉनसन ने भी 53 रन देकर 3 और मिचेल मार्श ने 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 362 रनों की बढ़त है और उसके 10 विकेट शेष हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर अपनी पकड़ और भी मजबूत की।
आदेश कुमार गुप्त सुना रहे थे खेल समाचार, और अब उन खबरों की बात कर लेते हैं जिन पर आज पूरे दिन रहेगी हमारी नजर।
खबरें जिन पर होंगी हमारी नजर, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार शाम को यानी कि आज एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें संभावना है कि सरकार पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों और विपक्ष के हमलावर रुख से निपटने की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा संकट में घिरी इंडियन प्रीमियर लीग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग आज होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जर्मनी के वाइस चांसलर जिगमार गैब्रियल 3 दिनों की ईरान यात्रा पर आज तेहरान पहुंच रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई सालों की बातचीत के बाद हाल में जो समझौता हुआ उसके मद्देनजर ये यात्रा काफ़ी अहम है। इसके अलावा हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज सीरीज का दूसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। पहला T20 मैच भारत ने 54 रनों से जीत लिया था।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। सऊदी अरब के शाह सलमान ने फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास के नेता खालिद मचाल से बातचीत की। 4 सालों में यह पहला मौका है जब सऊदी शाही घराने ने हमास से बातचीत की बात स्वीकारी। अमेरिका के चैटेनूगा में 5 सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने से पहले हमलावर ने अपने एक दोस्त को एक संदेश भेजा था जिसमें अमेरिका के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की बात कही गई थी। चेक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के मुताबिक लेबनन में उनके 5 नागरिक लापता हो गए हैं। फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जेफरी वेब ने अपने ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत ने $1 करोड़ के जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि वो अदालत के 32 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकते और उनकी गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नज़र रखी जाएगी। अमरीकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर रविवार को इसराइल पहुँचेंगे। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से चिंतित मध्य पूर्व एशिया के कई देशों को समझाने की अमरीकी कोशिशों के तहत कार्टर की ये यात्रा काफ़ी अहम है और इसराइल उसका पहला पड़ाव है। इसके बाद वो सऊदी अरब और जॉर्डन भी जाएंगे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे प्रभात कुमार पांडे। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में। स्टूडियो मैनेजर राजेश चौहान के साथ प्रभात पांडे और निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।